गया है कि ये भौतिक जगत है, ये दुखालय है।
वेरी गुड।
भगवान की भक्ति करके गोकुल धाम में इस दुखालय से मुक्तता प्राप्त हुई।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब तुम बताओ वाला। और
ये शरीर ही हमारा भौतिक है, ये तो कलेश से भरा है पूरा भौतिक जगत। तो हमें ये भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है ना, भक्ति। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करें, उसके प्रति समर्पण करें।
वेरी गुड।
हमें इस दुनिया की
बहुत अच्छी। अब तो बताओ, बोल, स्पीकर से कनेक्ट हो गया कुछ। बहुत सुंदर। और कौन बता सकते हैं, आप बताइए प्रभु जी। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। आई क्यों गई सुखों में से,
या फिर एक चांस दिया जाता
है। हाँ, एक चांस दे दिया जाता कि भाई कम से कम देख लो और फिर वापस आ जाओ जल्दी से।
हमारा कुछ कर्म ऐसा होता है हमारी आत्मा का पूर्ण बहुत मतलब आगे का, तभी ये कलयुग में हमें आना पड़ता है। कौन आएगा इस कलयुग में, किसी को आना ही नहीं है। कलेश में कलेश हो रहा है ना।
उनका यही प्रश्न है कि फिर यहाँ क्यों, हमें एक चांस दे के तुरंत वापस जाने का मौका भी मिल जाता। चांस तो देते ठाकुर जी, यहाँ तो फंस ही गए आकर के। बढ़िया प्रश्न है। और कोई कुछ बताना चाहता, कुछ ऐड करना चाहता, या सेम लाइन दोहराना चाहते हैं? यस,
मुझे प्राप्त करके कोई व्यक्ति दुखालय में नहीं आएगा, जैसे भोजनालय भोजन का घर और हिमालय हिमठात बल का घर, वैसे भगवान ने ऑलरेडी यहाँ पर एक डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया कि ये दुखालय था, दुखमय घर है। यदि हम चाहेंगे तो भी हम यहाँ पर सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, और एक बार यदि भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो हम फिर जो है दुखालय में वापस नहीं आएंगे।
वेरी गुड। यस राहुल प्रभु,
ये परम सिद्धि है,
परम सिद्धि
भगवान के था। इसके बारे में बता रहे अक्षर है, अव्यक्त है,
भगवान का धाम अक्षर है, अव्यक्त है और परमागति है। वेरी गुड। यस प्रभु जी,
बार बार पशु पक्षी या जीव जंतु में जो जन्म लेता है, वृक्ष को वृक्ष लेता है, इससे मनुष्य जन्म ऐसा है जिससे परमात्मा को प्राप्त कर सकते
हैं। बहुत बढ़िया। माताओं में कोई बताना चाहेंगे कुछ? प्रभुपाद जी ने बहुत सारी बातें बताया है यहाँ पर।
जो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है उसको मुक्ति का भी कोई लालच नहीं होता, वो भगवान के साथ ही
रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप सबने अच्छा प्रयास किया। अब कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। देखो प्रभुपाद जी यहां पर बहुत सारी बातों को बता रहे हैं, अनुवाद से ही आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष, अर्थात भगवान को प्राप्त करने वाले कौन होते हैं? महापुरुष। साधारण लोग भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक, लेकिन साधारण लोग ही बन क्या सकते हैं? महापुरुष बन सकते। तो महापुरुष बनने वाला व्यक्ति भगवान की प्राप्ति वाला होता है। तो मुझे प्राप्त करके महापुरुष, फिर आगे बता रहे हैं, शब्द खोल रहे हैं, जो भक्ति योगी हैं, जो कैसे हैं, भक्ति योगी। भक्ति योग एक ऐसा मार्ग है जिससे सहज रूप में आदमी महापुरुष बन जाता है। भक्ति की क्रियाओं में अगर आदमी चढ़ जाए तो सहज में क्या बन जाता है, महापुरुष बन जाता है। फिर क्या होगा, माम उपेत्य, इसको कहते हैं माम उपेत्य, मेरी प्राप्ति। मेरी प्राप्ति करने वाला कौन होगा, महापुरुष अथवा भक्ति योगी। भक्ति योगी महापुरुष बन जाएगा एक दिन, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। गीता में भगवान ने खुद और स्पष्ट रूप से इस श्लोक को कहा है, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। कोई असुर भी क्यों नहीं है, अपिचेत सुदुराचारो, लेकिन भक्ति योगी बन जाए अर्थात भजन करने लग जाए, भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समन्तव्य। अब साधु मानना पड़ेगा उसको, साधु ऊपर से तो नहीं लग रहा है ना, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को साधु मान लो। कैसे व्यक्ति को, जो ऊपर से दुराचार कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं सुदुराचार कर रहा है, सबसे खतरनाक वाला दुराचार कर रहा है। अर्थात महापुरुष कौन बन सकता है, कौन बन सकता है, कौन बन सकता है, दुराचारी बन सकता है कि नहीं, अरे सुदुराचारी भी बन सकता है। महापुरुष कौन बन सकता है, सुदुराचारी, इसलिए किसी के लिए रास्ते बंद नहीं, इसलिए किसी को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। चाहे कोई दारू पी के गटर में पड़ा है, या सिगरेट फूंक रहा है, या व्यभिचार कर रहा है, या मांसाहार कर रहा है, आंखों के सामने कितना भी भयानक से भयानक ब्रह्म हत्या में क्यों न लगा हो, घृणा नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं कि उसको संगति करें उसको और अपने जीवन में उन कर्मों को हम भी ले आए, नहीं, उस पर दया का हमेशा भाव रखना चाहिए। ये भी एक दिन महापुरुष बन सकता है। डाकू रत्नाकर ऐसे ही थे और कितने महान बन गए। ना तो किसी से घृणा करनी चाहिए, ना ही स्वयं में कभी उत्साहहीन होना चाहिए, ये सोच करके अरे मेरे से तो अब हो नहीं पा रहा है, मैं तो बार बार गिर जाता हूं, कोई बात नहीं, प्लानिंग मत करो गिरने की, प्लानिंग भक्ति की करो, फिर भी गिर जा रहे हो तो हताश होने की जरूरत नहीं, गिरना उठना चलता रहेगा। दुनिया में भगवान स्वयं को छोड़ करके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका पतन न होता हो, माया इतनी प्रबल है। स्वयं महापुरुष क्या, भगवान ही भले बच जाए, बाकी कोई महापुरुष बचता नहीं। महापुरुष जो बनते हैं वो सुदुराचार अवस्था से होते हुए ही बनते हैं। रास्ता यही है कि हम भजन में लगे, बस भक्ति में लगे, महापुरुष बनने का प्रयास करें, उत्साहहीन ना हो, हताश ना हो, ये ना सोचें अब तो हमारे लिए दरवाजे सदा सदा के लिए बंद हो गए, नहीं, इतने दयामय भगवान पहले ही घोषणा कर दिया, मेरी माया को जीत पाना भाई सहज नहीं, जरा सा भी अहंकार आएगा माया एकदम से लपेट लेगी, थोड़ा सा भी अहम आएगा बार बार, और अहम तो जाता ही कहाँ है, तो डूबे रहते हैं। जब बिल्कुल अहम शून्य हो जाएगा उस समय हम माया से बाहर निकल पाएंगे। समय लगता है इसमें, हमारा भजन कैसा है उस पर निर्भर कहता है। अनन्य भाव से भजन करेंगे तो क्षिप्रम भवती धर्मात्मा हो जाएंगे, अनन्य भाव से, हे कृष्ण हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए और आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। आपसे कुछ नहीं चाहिए और आपके अतिरिक्त किसी और से कोई लेना देना नहीं, केवल हम आपके हैं और आप हमारे हैं, बस ये अनन्यता है, ये मानना पड़ेगा। हम सोचे हम ये शरीर हैं तो शरीर हैं तो उस शरीर से संबंधित सब हमारे बन जाते हैं। हमें ये समझ बिठानी पड़ेगी हम आपके हैं और आप हमारे हैं, अर्थात आपके अतिरिक्त हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। इसे अनन्यता वाला भजन कहेंगे जब कोई इस चेतना के साथ भजन करे। ये नहीं क्यों नहीं आए सत्संग, बोले मम्मी ने मना कर दिया था, और भगवान स्वयं मम्मी बन करके कह रहे हैं माता धाता पिता माँ, भगवान कह रहे मैं ही माँ हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही धाता पिता माँ बाप दादा पर दादा सब मैं ही हूं। ये नहीं मम्मी ने मेरे को बोल दिया इसलिए ऐसा नहीं कर पाया मैं भक्ति में, पापा ने ऐसा बोल दिया इसलिए नहीं कर पाया, कल पत्नी ने मना कर दिया था आज नहीं जाना संडे प्रोग्राम में, आज शॉपिंग जाना है इसलिए नहीं आ पाया। नहीं, सब कुछ केवल आप ही हैं, आप ही की चलेगी बस। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही बंधु सखा, तुम्ही हो। इसी को आचार्यों ने गाया, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम्, त्वमेव, त्वमेव सर्वम् मम देव देव। आप ही मेरा सर्वम, सब कुछ आप है। जब हम इस अनन्यता से भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे तो वो व्यक्ति क्या होगा, ऐसा सुदुराचारी भयानक से भयानक व्यक्ति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा। अब हम ऐसे सुदुराचारी तो है नहीं कि एकदम से बोतलों की लाइन लगी हो और गिलास खाली किए जा रहे हो, शराबी हों, इतने भयानक मांसाहारी हों, व्यभिचारी हों, फिर भी हमें इतना समय लग जाता है, धर्मात्मा क्यों नहीं बनते? एक ही कमी है, हमारे अंदर अनन्यता नहीं, हम अनन्य भाग नहीं, इसलिए समय ज्यादा लग जाता है। तो भगवान की ओर से कोई कमी है हमें महापुरुष बनाने में, अपने धाम वापस ले जाने में? वो देर से ले जाना चाहते क्या? अर्थात वो इस नरक से, इस दुखालय से जल्दी निकालने के लिए आतुर है कि नहीं? कितने आतुर हैं बताओ? तो आतुरता का अभाव किधर है? हमारे अंदर है, लेकिन लगता कैसा है? लगता कैसा है? हमें भगवान ने यहां फेंक दिया, चांस ही नहीं दे रहे हैं, बोले। जैसे प्रभु जी ने कहा, एक चांस तो दे दे वापस आने का। अरे चांस तो पूरा पूरा दे रहे भैया, तुरंत वापस आ जाओ। और किसको चांस दे रहे हैं? बोले सबको चांस दे रहे हैं, आ जाओ। लेकिन जीव ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। छुप नहीं सकते पाप तुम्हारे, ए मूरख इंसान, कि सब कुछ देख रहा भगवान, कि सब कुछ देख रहा भगवान। छुप नहीं सकते पाप तुम्हारे, ए मूरख इंसान, कि सब कुछ देख रहा भगवान, कि सब कुछ देख रहा भगवान। हमारे हृदय में भगवान बिल्कुल बैठे हुए, राइट इन द कॉर्नर ऑफ आवर हार्ट, नेक्स्ट टू आवर एंटिटी, आत्मा के साथ भगवान ही बैठे हुए। और वो सब समझते हैं, ये संसार से जाना चाहता है कि ये सूकरवाड़े में ही अच्छा लग रहा है इसको। हम सबको यहाँ अच्छा लगता है, सुअरों को जैसे गटर में अच्छा लगता है ना, ऐसे हम सबको यहाँ अच्छा लगता है। अन्यथा अगर हम जाना चाहते तो हमारे जितने प्लॉट होते ना, सबको बेच के हमें दे देते आप लोग यहाँ। जितने मकान दुकान प्लॉट प्लॉट सब बेच बाच करके प्रभु जी यहाँ से जाना ही है। क्यों भैया, ठीक बात है कि नहीं? फटाफट फटाफट बेच देते, या पिताजी को बोलते पापा बेच दो, है कि नहीं? हम तो खरीदने के पीछे बैठे रहते, यहाँ भी एक मकान, यहाँ भी एक प्लॉट, वहां भी दुकान, वहां भी जमीन जायदाद। ऊपर से कहें भगवान ले नहीं जा रहे। तो हमारा अनन्य भाग भजन का है, हमें तो ये सुखालय लग रहा है और ऐसा लग रहा है आगे चल करके और सुखालय हो जाएगा। ये बीमारी हमारे दिमाग में भर गई है बुरी तरह से। आपको पता है ये कहां से भरती है, कैसे भर गई ये बीमारी? हमारी दिशा ही उल्टी हो गई। देखो भगवान करे तो मेरे पास आ जाओ, महापुरुष बन जाओ, कोई भी बन सकता है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मेरी प्राप्ति कर लो। इस दुखालय में जन्म मृत्यु जरा व्याधि खत्म, चरम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति करने के पश्चात किसी दूसरे लक्ष्य को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर जैसे एक लक्ष्य हो गया दसवीं पास करनी है, तो फिर खत्म हो जाएंगे क्या? दसवीं पास करते हैं फिर कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे क्या हम? फिर ग्यारहवीं का लक्ष्य आ जाएगा, बारहवीं का लक्ष्य आ जाएगा, फिर नौकरी लक्ष्य में बन जाएगी, फिर छोकरी लक्ष्य बन जाएगी, फिर धीरे धीरे वो छोकरी डोकरी बन जाएगी, छोकरा डोकरा बन जाएगा, बुढ़ापा घेर लेगा, फिर मृत्यु लक्ष्य बन जाएगी। हे भगवान उठा ले। लोग कहते हैं हताश होकर के दुखी होकर, फिर जहां जाएंगे कहीं तो पैदा कर दे, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, कुत्ते बिल्ली गधा सुअर वृक्ष, फिर वहां सब घूमना फिरना लक्ष्य बन जाएगा। ये लक्ष्य कभी खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा। एक लक्ष्य ऐसा है जिसकी प्राप्ति के बाद फिर कोई लक्ष्य की आकांक्षा ही नहीं रहती। इस संसार में तो दो ही लक्ष्य हैं, हम जो भागते हैं दुख से बचने का लक्ष्य बनाते एक, तो दूसरा लक्ष्य सुख की प्राप्ति का लक्ष्य बनाते, या तो भागेंगे बच गए भाई बच गए, लक्ष्य मिल गया बच गए, या ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत परिश्रम किया इसके लिए, बहुत पापड़ बेले, अब जाके मिला है, मिल गया मिल गया, बड़ी खुशी होती है। तो इस संसार में दो ही लक्ष्य है, एक तो दुख की निवृत्ति का लक्ष्य और एक सुख की प्राप्ति का लक्ष्य। हम जीवन में यही करते हैं, मनुष्य शरीर में मक्खी भी यही करती है। मक्खी एक जगह से उड़ के जाएगी किस लिए? दुख की निवृत्ति के लिए। उड़ेगी किस लिए? दुख की निवृत्ति के लिए। अरे थप्पड़ आ रहा है, उड़ जाओ, उड़ जाएगी। और बैठेगी कहां? जहां सुख मिलेगा वहां जाके बैठ जाएगी। तो इसको कहते हैं 2-in-1, उड़ना उस लिए जिससे बच जाए, बैठना उस लिए जिससे मजा आए। यही एक लक्ष्य की रास्ता है, और ये एक के बाद एक स्टेप बदलती रहती है। लेकिन एक ऐसा चरम लक्ष्य है जहां समूल दुख की निवृत्ति और अनंत आनंद की प्राप्ति, वो क्या है? माम उपेत्य, मेरी उपेत्य, मेरी प्राप्ति, मेरी प्राप्ति कर लो बस। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, भयानक इससे बच जाओगे। न आपनुवंती, फिर से यहां नहीं आओगे। महात्मान, ऐसे लोग महान आत्मा कहलाते हैं, महापुरुष कहलाते हैं। तो भगवान हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे है कि नहीं? लेकिन हमें ये अपॉर्चुनिटी ये परम लक्ष्य के रूप में समझ में कहां आ रहा है? परम लक्ष्य वो है, चरम लक्ष्य वो है, और हमारा लक्ष्य दूसरा बना हुआ है। भगवान कह रहे हैं इस दुखालय, इस अशाश्वत, इस जन्म मरण के पुनर्जन्म आदि के संबंधित ये जो संसार है, इससे बचाओ, और हम इसमें घुसते चले जा रहे हैं। तो हमारी दिशा ही बदल गई है पूरी तरह से, है कि नहीं? आदमी इस संसार में विस्तार करना चाहता है, इस संसार में संबंध बनाना चाहता है, इस संसार में संसार की दुनिया भर की वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहता है। परिणाम क्या होगा? अशाश्वत वस्तुएं, दुखालय वस्तु, दुखकारी वस्तुएं, और पुनर्जन्म आदि का चक्र वाली वस्तुएं। सड़ते रहो इधर ही, हमारी दिशा ही बदल गई। ये दिशा कैसे बदली? जैसे इन्होंने प्रश्न किया, ये दिशा कैसे बदली? ये संसार हमारी खोपड़ी में इतना कहां से घुस गया? हमारी खोपड़ी में कृष्ण क्यों नहीं घुसे जो इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं? इस संसार में इवेंचुअली हमारा एटीट्यूड वही है। कौन सा एटीट्यूड? दुख से निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, एटीट्यूड वही है। इसलिए तो इस बात को चर्चा करने न था, चर्चा ही क्यों करते? और हम बैठ करके सुन भी रहे। ये तो एटीट्यूड तो अंदर से वही है। धाम में जाने के लिए भगवान यही रास्ता कह रहे हैं, भाई यही मिलेगा तुम्हें जैसा सोच रहे हो। और यहां भी हमारा प्रयास भी वही रहता है। तो कैसी बेवकूफी है कि हमें भगवान के वचनों पे भरोसा नहीं है? अपनी वही इच्छा की पूर्ति जो भगवान हमें करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम उसमें घुस नहीं रहे, उस फ्रेमवर्क में नहीं घुसा रहे अपने आप। और इस संसार में उसी एटीट्यूड के साथ दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। सोच रहे हैं और निकल रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, लेकिन दलदल में फंस रहे। कैसी खतरनाक स्थिति हमारी। कोई दलदल में ऐसे फंस जाए, जितने हाथ पैर मारेगा उतना ही जल्दी नीचे जाएगा। होता है ना ऐसा? लेकिन उसको बोलो हाथ पैर मत मार, तो उसको वैसे ही सांस लेने की हिम्मत नहीं होती। हाथ पैर नहीं मारूं, मतलब मारना चाहते हो तुम लोग मेरे को, बचने का उपाय ही नहीं करूं? बोले उपाय करो, एक उपाय बस, क्या हम हाथ पैर मारेंगे, तुम सिर्फ ये रस्सा पकड़ लो, बस इतना सा उपाय कर लो। वो उतना उपाय नहीं करता, हाथ मारेगा, पैर मारेगा, दुनिया भर की इधर उधर खोपड़ी घुमाएगा, बातें करेगा दुनिया भर की, चीखेगा चिल्लाएगा, लेकिन रस्सा नहीं पकड़ेगा। उसको रस्सा पकड़ना ऐसा लगता है बस इतना सा करने से मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तो हाथ भी मार रहा हूं, पैर भी मार रहा हूं, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, आंखों के पलक भी दबा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी नहीं बच रहा हूं, केवल रस्सा पकड़ने से बच जाऊंगा। भगवान क्या कह रहे हैं पता है, तुम रस्सा भी मत पकड़ो, क्या करो, हाथ पैर भी मत मारो, तो क्या करो, सिर्फ ऐसे हाथ करके ऊपर खड़े हो जाओ बस। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तुम रस्सा भी मत पकड़ो अपने हाथों से, सिर्फ मुंह से इतना सा बोलते हुए सिर्फ मेरे को पुकार लो सहायता के लिए, मैं ही गरुड़ पर आकर के तुम जो डूब रहे हो ना तुम्हारे हाथ को पकड़ के खींच के ले जाऊंगा। हाँ कितनी दया है बताओ, रस्सा भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने तो वो भक्ति दिया हमें, हम करेंगे बोले वो काम जिसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल अपना ये शो करना है मैं मर रहा हूं और मेरे को बचाओ, बस इतना नहीं कर सकते। लेकिन हमसे यही नहीं होता, क्यों, खोपड़ी में ये बात बैठ गई है अंदर कि नहीं मैं संसार में डूबते हुए भी बोले डूब नहीं रहा हूं, मुक्त हो रहा हूं, ये बात बैठ गई। और भगवान की भक्ति करने से, भगवान की शरण में जाने से बोले मैं तो डूब जाऊंगा, ये बात बैठ गई, उल्टा दिमाग घूम गया है पूरी तरह से। वैकुंठ को गोलोक वृंदावन धाम को हमने दुखालय मान लिया है और इस संसार को हमने सुखालय मान लिया है, ये बात दिमाग में ऐसी बैठ गई है। प्रयास एक ही है हमारा, दुख से बचने का, सुख की प्राप्ति का, होता उल्टा है क्रियात्मक रूप से। संसार में घुसते चले, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वाई डू हैपन्स बैड थिंग विद गुड पीपल, प्रयास तो मेरा गुड था फिर बैड थिंग्स क्यों हो रही है संसार में, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को दुखी क्यों मिल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है मैंने भजन किया कीर्तन किया ऐसा लगा ऐसे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बाद में पता चला अरे आनंद आ गया, उसमें भी आश्चर्य होता है भक्तों को, संसार के लोगों को, यार इसमें ऐसा क्या था, मैंने तो थोड़ा नाम ही जपा बस, मन से ऐसा क्यों लगता है कि बहुत आनंद मिल गया, सिर्फ आधा घंटा एक घंटा दो घंटा भजन किया अच्छा लगा बहुत, टीवी देखने में मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत मजा आएगा, लेकिन बाद में यार नींद खराब हो गई, फालतू में टेंशन वाला दुख मिला, यहां सोच रहे थे सुख मिले, बाद में संसार में हर क्रिया में आदमी को पछताना पड़ता है, और भक्ति में हर क्रिया में आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी प्राप्ति होने पर वो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर नहीं चलता और हर क्रिया में दुख की प्राप्ति के पश्चात भी संसार के मार्ग पर दौड़ता रहता है, क्यों, जबकि दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति एटीट्यूड वही है, फिर भी वो क्यों दौड़ता रहता है, इधर क्यों नहीं चलता, क्यों, दिमाग में बात बैठ गई है संसार की, बस कि संसार सुखालय है, दिमाग में बात बैठ गई है ये लोग तो घर बर्बाद करने वाले लोग हैं, ये तो घर तोड़ने वाले लोग हैं, ये तो इकलौते बच्चों को भी ब्रह्मचारी बनाने वाले लोग हैं, ये तो भाई बर्बाद कर देंगे, संसार मिटाने वाले लोग हैं ये लोग, इसलिए भगवान का धाम दुखालय है, तरस नहीं आता इनको माँ बाप के ऊपर, नाते रिश्तेदारों के ऊपर, इसलिए इनसे दूर ही रहना अच्छा है। हम सब के दिमाग में ये बात बैठ गई, अब ये बात आई कहां से, बैठी कहां से, प्रश्न उठता है कहां से बैठी ये बात, ये बात सिर्फ दो जगह से बैठती है, कितनी जगह से, दो जगह, सबसे पहले ये बात आंखों के माध्यम से घुस जाती है, कहां से? आंखों से। ये संसार घुसा कहां से? आंखों से घुसा। मेरे कृष्ण उसको भूल करके जब संसार में आ गिरते हैं, पैदा होते हैं, आंखें खोल के, ओ अच्छा ये यही है, ओ अच्छा यही है, हाँ यही है, यही माँ, ये मेरी माँ है। कृष्ण को भूल गया, मेरी माँ है। बार 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 एक ही स्त्री आ करके अपनी शकल दिखा रही है उसके सामने, पहले दिन तो पहचानता नहीं, एक दो दिन, दो चार दिन बाद उसके बार 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 सामने मडराती रहती, फिर हाँ ये मेरी माँ है। बार 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 उसके कानों में वो डालती रहती, माँ बोल बोल बेटा, माँ बोल बेटा, माँ बोल बेटा, माँ। तो ये बात बार 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 बार, दूसरी चीज है जहां से संसार घुस गया इस खोपड़ी में और हमें पागल बना दिया, वो क्या है? कान। ये दो ही जगह से संसार घुसना चालू हो जाता है। इस संसार की, जिसको अंग्रेजी कभी नहीं आती थी, सिर्फ सुन सुन करके कानों से बचपन से, बिना स्कूल में जाए वो अंग्रेजी बोलने लगता है बचपन से, अगर अंग्रेजों के यहां पैदा हो जाए तो। लैंग्वेज का ज्ञान कितना अच्छा हो जाता है उसको। कहां से घुस गया संसार? कानों से। कहां से घुस गया संसार? आंखों से। ये दो ही चीजें बस। और आपको पता है यही दो चीजें ऐसी हैं जो भगवान ने दो दो की संख्या में दी है। एक आंख से भी काम चल जाता, एक कान से भी काम चल जाता, लेकिन भगवान ने दो दिया। इतना इमरजेंसी है बोले इनकी, एक खराब हो जाए तो दूसरे से काम चलाना। लेकिन जीवन का लक्ष्य इन्हीं दो चीजों से मिलेगा, और कोई तीसरा उपाय है ही नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा फिर इस संसार को भुलाने के लिए? दूसरी चीज डाल दो। दूसरी चीज क्या? कृष्ण को आंखों से डाल दो, कृष्ण को कानों से डाल दो, बस। यही बंधन का कारण है, यही उद्धार का कारण भी बन जाएगी। बस रात दिन यही काम करना है। लेकिन कलयुग में और कठिन हो गया, मंदिर में भी मोबाइल आ गया जो संसार को आपको मंदिर में बैठे बैठे दिखाता रहता है अपने आप, और मंदिर में मोबाइल में आदमी सब गंदगी देखता है, सारे संसार को देखता है। ऊपर से कहता है मंदिर में भी कृष्ण क्यों नहीं मेरे मन में आ रहे, क्यों नहीं घुस रहे? कितने साल तक संसार को हमने कानों और आंखों से डाल दिया, अब दो चार साल तो कम से कम कानों को और आंखों को भगवान की सेवा में लगा दो, और कुछ सोचो ही मत। अगर ये नहीं किया तो भाई ये संसार कभी निकलने वाला नहीं, जन्म पर्यंत जन्म लग जाएंगे, कोई उपाय नहीं। इसलिए भूल करके भी हमें आंखों को और कानों को इधर उधर नहीं भटकने देना चाहिए। इसलिए सबसे पहले बहरे बन गए जड़ भरत जी जब पैदा हुए। जड़ भरत जी अपने कानों में संसार की बात घुसने ही नहीं देते थे, गलती से घुस भी जाती थी तो रेस्पॉन्स ही नहीं करते थे, जिससे लोगों को लगता था ये तो बहरा आदमी सुनाई दे रहा है लेकिन रेस्पॉन्स ही नहीं है। हमें तो सुनाई देता है तो कितना बढ़ चढ़ के रेस्पॉन्स देते, और हम भक्तों के प्रति बहरे बन जाते हैं। भक्त लोग कुछ कहते हैं हम इधर से सुन लेते, इधर से निकाल देते, बहरे हमें तो पता ही नहीं चला। भक्तों के साथ रहते हैं तो हम अंधे और बहरे बन जाते हैं, और संसार में जब रहते हैं तो चश्मा लगा लगा के देखते, जब ठाकुर जी आंखों को भी खराब कर देते, क्या फायदा तेरी आंखों से, संसार में और डाल रहा है, तो इससे अच्छा आंखें फोड़ देता हूं मैं तेरी, तो भगवान आंखों की रोशनी कम करने लग जाते, तो हम चश्मा लगा के देखने लग जाते। जब संसार में गंदगी से कान फूटने लग जाते हैं, तो भगवान उसमें लोग मशीन लगा करके सुनने लग जाते हैं और संसार को डालते, पेट भरता नहीं उनका। और कोई अगर भगवान के दर्शन करता है, भगवान के कानों से कथाओं को सुनता है, उसके जीवन में कभी आंख कान खराब नहीं होते, उसके उल्टा तेजस्वी बन जाते हैं। इसलिए हमें केवल एक काम करना है बस। क्या, कौन सा काम? भगवान को देखना है, अर्थात भक्तों के बीच में रहना है बस। जिससे आसपास भगवान और भगवान के भक्ति दिखाई देंगे और हरी चर्चा ही सुनाई देगी। तो सिर्फ एक काम करना है, भक्तों के बीच में रहना है, संसार से बाहर निकलना है। और फिर इतने पक्के भक्त बन जाए, फिर भक्तों के बीच से निकलना है और संसार में जाकर के रहना है, फिर उन सबको भक्त बनाना है। पहले क्या करना पड़ेगा? संसार से निकलना है, भक्तों के बीच में आके रहना है। बाद में क्या करना है? भक्तों के बीच से निकलना है और संसार में जाकर के रहना है, फिर वहां भक्तों का माहौल बना देना है। कितना बढ़िया हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी ने पहले क्या किया, अपना घर छोड़ा, वृंदावन में आ गए। बाद में क्या किया, वृंदावन छोड़ा, कलयुग की राजधानी न्यूयॉर्क में चले गए। फिर क्या किया, माम उपेत्य पुनर्जन्म, वापस वृंदावन आ गए। चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, उद्धार हो गया, ना केवल अपना, कईयों का कर दिया। तो कोई जब तक पक्का नहीं बनता, तब तक भक्तों के बीच से संसार में मत जाना। बन गए तो संसार में चले जाना। गुरुजी खुद ही कहेंगे जाओ बेटा, तुम जाओ। ये नहीं कि हमारे अंदर कुलकुली मचन, गुरुजी कब भेजेंगे मेरे को, कब मंदिर बनेगा, मैं मेरा मंदिर अपने हाथों से कब बनाऊं, मैं प्रेसिडेंट कब बनूंगा। ये बड़ा खतरनाक मामला है, ऐसे प्रचारक नहीं बन सकते। वो आशीर्वाद से ही संभव होगा। जब आशीर्वाद देंगे, गुरुदेव मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ, जाओ सब ठीक होगा, तब फिर दूसरों का भी उद्धार में हम निमित्त बन पाएंगे। नहीं तो एक ही उपाय भैया, इस संसार में चरम लक्ष्य से हम बहुत दूर चले जाएंगे हमारे हर एक प्रयास के द्वारा। संसार में हम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे हम फिजियोथेरेपी का करें, वो प्रयास सोचें कि हमने दूसरों का उद्धार करना है, दूसरों की सेवा करनी है, वो सेवा सेवा थोड़ी है। सेवा तो भक्ति के प्रचार प्रसार की सेवा है। क्यों प्रभु, गलत कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? फिर संसार को हमने डालने से बंद करना है या चालू रखना है? बंद करना है। कब से चालू करना है, कब से बंद करना है संसार को डालना, और भगवान को डालना कब से चालू करना है? कि ब्राह्मण से मुहूर्त पूछना पड़ेगा, तुरंत करना है। तालियां बजाओ सब इनके लिए। अब ये प्रभु जी आदर्श रखते हुए वापस नहीं जाएंगे संसार में। हरी बोल, हरी बोल, देखा उसने भी बोल दिया। क्यों भैया प्रकाश प्रभु, गलत है सही है? क्या सही है, तुम जैसा सोच रहे हो वो या हम कह रहे हैं वो? किसके लिए सही, तुम्हारे लिए या मेरे लिए? पालन होगा इसका? हाँ, कब से वो नहीं पता। किसको पता है, मैं पूछता हूं इसी से फिर। मेरे को ही पता है। बढ़िया बात है, तालियां बजाओ सब इसके लिए। हमें महाराज ने पूछा कि भाई तेरा प्रोग्राम क्या है, जब दीक्षा हो रही थी, इंटरव्यू हो रहा था, ओपन इंटरव्यू हो रहा था, वैसे पर्सनल होता है, मेरा सौभाग्य से ओपन हो रहा था, कई सारे लोगों के बीच में खड़ा कर दिया था। महाराज पूछते क्या विचार है तेरा, गृहस्थी बनने का विचार है ब्रह्मचारी बनने का विचार है? कई सारे प्रश्न किए थे तो बाकी सब प्रश्न तो मैं फटाफट उत्तर दे रहा था, ये प्रश्न किया तो मैं अटक गया, मैं चुप हो गया। मैंने महाराज के सामने ही, महाराज जैसा आप चाहें। महाराज बोले मेरे सर पे मटका फोट, तेरी क्या इच्छा है? तो महाराज कहने लगे मैं चाहूंगा कि मेरे शिष्य लोग अच्छे ब्रह्मचारी बने, नहीं तो अच्छे गृहस्थी बने। अभी तो दोनों ही बातें कह दी, लेकिन कहनी पड़ती है योग्यता के आधार पर सबके लिए। लेकिन पहले अच्छे गृहस्थी बने ऐसा तो नहीं कहा था ना, पहला शब्द क्या था? अच्छे ब्रह्मचारी बने। नहीं बन सकते तो अच्छे गृहस्थी। हम तो ऐसे ही धक्के खाते हुए चल रहे हैं, अच्छे ब्रह्मचारी भी नहीं बन पा रहे हैं। आप सब आशीर्वाद दो जिससे अच्छे भक्त बन जाए जीवन में। तो हमें इसी लक्ष्य को अपनाना है बस। अब कब अपनाना है, अब आप अनुमान लगा लो कितने जन्मों से हमने संसार को भरा हुआ है खोपड़ी में, इसी जन्म में कितना समय व्यतीत कर दिया। तो कितना हमें समय देना पड़ेगा जिससे मृत्यु से पहले पहले कृष्ण बस जाए, और जब कृष्ण आ जाएंगे तभी अंतिम समय में हम कृष्ण का चिंतन कर पाएंगे, तभी भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं कि वो मेरे पास ना आए, प्रयास हमारा करना पड़ेगा। तो बस सब लोगों से यही निवेदन है, अपने जीवन को, अपने जीवन की डोरी को हम भगवान के चरणों में, भगवान के प्रतिनिधि गुरुजनों के चरणों में, गुरुजनों के प्रतिनिधि उनके भक्तों के चरणों में हम अपने जीवन को सौंप दें बस। ये चिंता किए बिना क्या होगा, मैं तो बहुत पापी हूँ, मेरे अंदर तो बहुत कामना भरी पड़ी है, मेरे अंदर तो क्रोध भरा पड़ा है, मेरे अंदर तो लोभ भरा पड़ा है, यहाँ आकर के कहीं मेरा पतन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, सौंपना सीखना चाहिए, अनन्य भाव से थोड़ा सा ताकत लगा करके लगना चाहिए। संघर्ष तो है ना, अंदर तो अन्यता भरी पड़ी है और अनन्य कार्य करना है तो थोड़ा तो टग ऑफ वार होगा ना। जैसे अंदर से बच्चे में चंचलता भरी पड़ी और उसको पढ़ाई लिखाई में खेलने में रुचि और उसको पढ़ाई करवाओ तो संघर्ष तो होगा ना। तो बच्चा संघर्ष करता है कि नहीं, कि मन की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए उसकी, जा जा बेटा खेल, तू जा खेल, कभी पढ़ने के लिए बोलो ही मत उसको, करने देना चाहिए क्या? नहीं। ऐसे कोई व्यक्ति प्रभु मेरे को नौकरी करनी, पैसा कमाना है, अरे बेवकूफ पैसा क्यों कमाना है, चल हरि नाम कमा। नहीं प्रभु जी मेरे को शादी करनी है, कोई लड़की आप ही ढूंढ के दे दो, क्या बेवकूफ आदमी नहीं करनी, चल भक्ति कर। सब ऐसे ही, तुम्हारा मन कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन कल्याण उसमें नहीं है ना, चरम लक्ष्य वो नहीं है ना, चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, चरम लक्ष्य तो गीता में बता रहे। कोई गलत कह रहा हूं मैं अनिकेत प्रभु, कुछ गलत बोला मैं? राहुल प्रभु कुछ ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? ऐसा गीता कह रही है। तो ये हमारे पास मौका है, हम सब इस मौके का उपयोग करें।
हरी भजने का मौका है, हरी भजने का मौका। प्रभु गुन गा ये मौका भी अनोखा है, प्रभु गुन गा ये मौका भी अनोखा है, प्रभु गुण गा ये मौका भी अनोखा है, प्रभु गुण गा ये मौका भी अनोखा है। चला जा रहा संसार टिकट लिए तैयार बैठो जी, चला संसार टिकट लिए तैयार, संभल कर चलना रे भाई सरासर इसमें धोखा है, संभल कर चलना रे भाई सरासर हरी भजने हरी भजने हरी भजने का मौका है, हरी भजने हरी भजने का मौका है। नहीं माता पिता बंधु जगत में साथी कोई तेरा, नहीं माता बंधु जगत में साथी कोई तेरा। हमारे माता पिता ने हमें नहीं सिखाया तो उनसे दूर रहो, और अगर हमें कोई बच्चे मिल गए हम माता पिता बन गए तो उनको हम सिखाएं। जैसे हम संसार में जा रहे थे सिखाने के लिए, पहले अपने घर में ही सिखाना चालू कर दें, फिर संसारी लोगों को सिखाएंगे। नहीं माता पिता बंधु जगत में साथी कोई तेरा, नहीं माता पिता बंधु जगत में साथी कोई तेरा, जिन्हें तुम अपना समझे हो पराए संग में धोखा है, तुम अपना समझे हो पराए संग में धोखा, हरी भजले हरी भजले हरी भजने का मौका है, हरी भजने भजले हरी भजने का मौका, हरी भजले हरी भजने का मौका है। भगवान को भजना है, भगवान के नाम का भजन करना। बोले नाम को भजने से भगवान का क्या होगा? ये नाम जो शब्द है ना, ये नम शब्द से आता है। नम शब्द का अर्थ होता है नमन करना, नमन अर्थात नमस्कार, नमस्कार का अर्थात झुकना, नमन माने झुकना। हम किसी का भी नाम जब लेते हैं ना तो दूसरा व्यक्ति उस नाम के कारण झुकना चालू हो जाता है, समझ में आया? इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा के कारण झुकना चालू कर देते हैं। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। हो सकता है हमने भगवान को नहीं देखा, बोले भगवान को देखा ही नहीं तो हम कैसे भजें उनको, क्या मिलेगा भजने से? अरे जब हम भजन करेंगे ना तो भगवान हमारे ऊपर झुकने चले आएंगे, झुकते चले आएंगे अपने आप। इस नाम की शक्ति ऐसी होती है। स्वयं श्री कृष्ण नाम जपते हैं, पता आपको? स्वयं श्री कृष्ण यमुना किनारे जाते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं और दो अक्षर का राधा नाम, राधा 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 ऐसे जपने लग जाते हैं। और इस नाम का ऐसा प्रभाव होता है, राधा रानी के हृदय में अपने आप कृष्ण की ओर खिंचाव झुकाव पैदा हो जाता है अपने आप। तो राधा रानी अंदर से एकदम से ऐसा फील करती हैं, अरे ये प्रेम अचानक से कृष्ण के प्रति क्यों जाग रहा है? और फिर वो दौड़ करके जाती हैं कृष्ण से मिलने के लिए। तो राधा रानी को किसने खींचा? नाम ने।
ऐसी राधा रानी जपती है तो कृष्ण बेचैन हो जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं भागने के लिए। ऐसे अगर हम राधा कृष्ण का नाम जपेंगे तो राधा कृष्ण दोनों ही मजबूर हो जाएंगे, चलो 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 चलो। तो ये नाम की बहुत आवश्यकता है, हमें इस नाम को जपना चाहिए, इसी से सब मंगल होंगे। बड़े सुंदर शब्द हैं, कहीं भी हम रहें किसी भी अवस्था में रहें हमें भगवान का भजन करना है, चाहे जानकी राम जी का भजन करें, कृष्ण का भजन करें। राधा रमन करने के कारण कृष्ण का नाम, रमन करने के कारण राम भी है, और राम में और कृष्ण में वैसे भी कोई अंतर नहीं, इसलिए हमें बस गाते जाना है, सुनते जाना है इन कानों से, यही उपचार है। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। क्या होगा? राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। हम लोग संसार में रमन करते हैं, हा संसार, हा गाड़ी, हा बंगला, यही चीजें गाते रहते हैं, इन्हीं में लगन लग जाती। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। क्या होगा? राम ही तारे राम वारे, राम नाम दोहराए जा, राम ही तारे राम वारे, राम नाम राम ही तारे राम वारे, राम नाम दोहराए जा, राम ही तारे राम वारे, राम नाम राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा। कब कब गाना है? हर समय। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। जहाँ जाएं जहाँ रहें केवल कृष्ण के लिए जीवन जिए। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। जब आराम नहीं है तो सुख कैसे मिलेगा? अरे ये राम के गाने में ही आनंद है भाई, आराम में तो दुख है। राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा, राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए, राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा, राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। यहाँ संसार में तो हम लोग भूल भुलैयों में फंस जाते हैं, लगता है ओ इधर डेस्टिनेशन है, फिर लौट के आते नहीं नहीं इधर नहीं, इधर है, इधर नहीं, इधर है। भटकते हैं भूल भुलैया, भटकते हैं जब भूल भुलैया, भटकते हैं जब भूल भुलैया, भटकते हैं जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया, बीच भंवर जब। अब फंस गए संसार के दलदल में तो क्या करें? एक ही काम, राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए 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 जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा।
राम नाम बिन जागा सोया, राम नाम बिन जागा सोया। हम संसार में जागे हुए लग रहे, बड़े चतुर लगते हैं, बड़े होशियार लगते हैं, बड़ा दिमाग वाले लगते हैं, अरे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन हम जागते हुए भी सोए रहते हैं। सपने के ही सुख दिखाई देंगे हमें, वास्तविक सुख नहीं मिलेंगे। राम नाम बिन जागा सोया, राम नाम बिन अंधियारे में जीवन खोया, अंधियारे में जीवन खोया। ये संसार घोर अंधकार से भरा पड़ा, पता है इतना अंधेरा इस संसार में कि प्रकाश को खा जाता है, घोर अंधेरा प्रकाश को खा जाता है। वो तो हमें थोड़ा प्रकाश भगवान ने इस संसार में भजन करने के लिए दिया है सूर्य चंद्र आदि के द्वारा। जब ब्राह्मण के 9 बच्चे मारे गए, अर्जुन को लेकर के भगवान कृष्ण जब उसको लेने के लिए चले, तो इस ब्रह्मांड को पार करते हुए जब जाने लगे तो इतना घना अंधकार आ गया कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उस स्थिति में सैकड़ों सूर्यों के समान तेज रखने वाला भगवान ने सुदर्शन चक्र को आगे किया, जो रास्ता रथ से आगे दिखाएगा। और वो इतना तेजस्वी सुदर्शन चक्र भी ऐसा लग रहा था जैसे एक दिए का प्रकाश दे रहा है, बस एक दिया आगे चल रहा हो। ये संसार इतने अंधेरे से भरा पड़ा है, इसलिए संसार में हमें अंधेरे में जूझना पड़ेगा। अगर हम पड़े रहेंगे तो ठोकरें खानी पड़ेंगी, गिरना पड़ेगा, इससे बाहर निकलने में ही सार है। राम नाम बिन जागा सोया, राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया, अंधियारे में। ये राम नाम से क्या होगा, हमारा मन जो अंधेरे में भटकते हुए आनंद अनुभव कर रहा है जाग जाएगा, इसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, समझ आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। राम रमैया गाए जा मन का दीप जलाए जा, राम रमैया गाए जा मन का दीप जलाए, राम रमैया गाए जा मन का दीप जलाए जा, राम रमैया गाए जा मन का दीप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव।
15 मिनट थोड़ा हमने ज्यादा ले लिया, क्षमा कीजिए, 2:30 से 2:45 हो गया। वैसे कथा तो हमने पहले ही खत्म कर दी थी, बाद में एक भजन सुना दिया, बस ऑन टाइम ही समाप्त हुआ हमारा। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए और निर्णय लेने के लिए कि अब हमने संसार में पुनः संसार को न देखना है न सुनना है, अब हमने यहीं पर अपने जीवन को व्यतीत करना है, भगवान के भक्तों के बीच में ही देखना है और सुनना है। इसमें सबसे बड़ी बाधा देता है मोबाइल, जो यहीं दिखाता भी है और कहीं से भी दुनिया के संसार के फोन आते रहते तो सुनाता भी है। इस संसार के देखने सुनने से बचते हुए कृष्ण कथा को देखना है, भगवान को देखना और सुनना है, तभी बेड़ा पार हो जाएगा। धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और 15 मिनट और अधिक बैठने के लिए खेद है। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। अनन्यता एक दिन का सौदा नहीं है, अनन्यता धीरे धीरे करके आती है। अनन्यता का अर्थ है कृष्ण को छोड़कर के अन्य किसी की ओर न जाना ही अनन्यता है। तो क्या बिल्कुल भी हम संसार में किसी के साथ कोई नाता ही न रखें? तो दो चीजें होती है, एक अनन्य होता है एक अनन्यता होती है, एक दुष्ट होता है एक दुष्टता होती है, समझ रहे हो? तो दुष्टता और दुष्ट में क्या अंतर है? दो शब्द हैं ना, दुष्ट और दुष्टता, क्या अंतर है?
दुष्ट दुष्टता बुद्धि
है। जैसे मान लो क्रूर और क्रूरता, हाँ? क्या हाँ, जब व्यवहार किसको दुष्ट कहेंगे किसको क्रूर कहेंगे, कोई किसी के ऊपर प्रहार करे तो उसको क्या कहते हैं? क्रूर कहते हैं ना प्राय। अब जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा है उसके ऊपर, उसने थोड़ा सा करके थोड़ा पत्थर मार दिया हल्का सा, तो उसने थोड़ा उस पर प्रहार किया तो क्या उसको क्रूर कहेंगे? दूसरे शब्दों में कोई व्यक्ति जा रहा सोते हुए कुत्ते पे लात मार रहा है, पत्थर मार रहा है, मारने का काम दोनों ने किया, मारने का काम, तो क्या दोनों क्रूर हैं? कौन सा क्रूर है? नहीं, पहले वाला क्रूर नहीं है, पहले वाला क्रूर नहीं है, दूसरे वाले के अंदर क्रूरता है। पहले वाले में क्रूरता नहीं है लेकिन क्रूर जैसे काम दिख रहे हैं, लेकिन क्रूरता क्रूर कार्य है, क्रूरता मतलब स्वभाव में नहीं, उसके नेचर में नहीं, समझ रहे हो? इसलिए अनन्यता होनी चाहिए, अर्थात स्वभाव में किसी की शरणागति किसी के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए सिवाय कृष्ण के, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। कभी व्यवहार में दिख जाए तो अलग बात है, जैसे माता द्रौपदी कृष्ण को कहती है अरे मेरी लाज की रक्षा करो, तो कृष्ण से लाज की रक्षा मांग रही है, कृष्ण को कहां मांग रही है वो, फिर भी उनको अनन्य मांगा गया, वो तो अपने दुखों से निवृत्ति मांग रही है ना, तो कृष्ण से अलग चीज मांग रही है, तो फिर उनको अनन्य क्यों कहा गया? बोले उनके अंदर अनन्यता का स्वभाव है, व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि वो भगवान के अतिरिक्त कुछ और मांग रही है, जैसे व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि वो पत्थर मार रहा है, बड़ा क्रूर है, लेकिन उसके अंदर क्रूरता नहीं, उसके स्वभाव में नहीं मांगना। तो माता द्रौपदी जो मांग रही मूलतः वो कृष्ण के लिए ही मांग रही, कृष्ण अगर मेरा ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारे ऊपर तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा, मुझे तुम्हारे सम्मान की चिंता है, वो अंतरंग भाव है। लेकिन बाहर से हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्वार्थी हैं, अपने लिए मांग रहे। तो अनन्यता का अर्थ ये होता है कि हमारे स्वभाव में संसार नहीं होना चाहिए। संसार में जीते हुए देखे जा सकते हैं, संसार में रसगुल्ले खाते हुए देखे जा सकते हैं, कि रसगुल्ले के लिए मरते हुए नहीं देखे जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्तों को, अरे ये भी रसगुल्ला खाते कैसे भक्त है, अरे रसगुल्ला खा रहे हैं भगवान का प्रसाद समझ करके उसको खा रहे हैं, लेकिन रसगुल्ला दूसरा ले गया उनकी थाली में जो दे डंडा लेकर के उसके पीछे भाग पड़े, एकदम जान ही ले ली उसकी एक रसगुल्ले को लेकर के। तो ये दर्शाता है कि उनके अंदर अनन्यता नहीं है, भगवान की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए भगवान को ही चाहना, ये स्वभाव हो जाए हमारा, अनन्यता हो जाए, चाहे हम व्यवहार से ऐसे ना भी दिखाई दें लेकिन स्वभाव हमारा ऐसा होना चाहिए। होता उल्टा है, स्वभाव से हम व्यवहार से हम दिखाते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। कई बार व्यवहार हमारा धोती कुर्ता तिलक छापे आदि के साथ ऐसा होता है और अंदर अन्यता भरी पड़ी रहती है, अनन्यता नहीं अन्यता। तो ये बहुत बड़ा अंतर है इस शब्द में, इसको हमेशा के लिए ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अनन्यता नहीं, अनन्यता चाहिए। अनन्य ना बन पाए हम व्यवहार से अलग बात है, लेकिन अनन्यता हमारा स्वभाव बन जाए, कृष्ण के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, हाँ बहुत बहुत बढ़िया। वैसे ये शब्द आपने सुने ही होंगे, क्रूर और क्रूरता, दुष्ट दुष्टता, अनन्य अनन्यता, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो ये शब्द शब्दावली अमरकोश में दर्शाती है कि आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, इन द बॉक्स वाली थ्योरी है, तभी तो ये शब्द हमारे जाने पहचाने से है ना। तो अब वो अलग बात है कि हम भगवान के संदर्भ में इन शब्दों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते, इसलिए हमें आउट ऑफ बॉक्स लगते हैं। तो इस स्थिति था वो इस सिखाया गया संसार में, इसलिए हम ऐसे बन गए। इसको हमें एक फैमिली के अंदर, जैसे पांडव लोग माता कुंती के साथ निवास करते हुए अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे जीवन जीना चाहिए। अर्थात सबका सेंटर पॉइंट कृष्ण है, ऐसे हम सबके सेंटर पॉइंट गुरु हो जाएं, भक्त हो जाएं, शास्त्र हो जाएं, हम उनके अनुसार अपने जीवन को जीने लग जाएं। यह हमारे अंतर्गत जो वरिष्ठ हैं, हमसे बड़े चढ़े हैं, हम उनको ही एक आदर्श मानते हुए उनके अंतर्गत अपने जीवन को जीने लग जाएं। अर्थात सब कृष्ण के लिए जीवन जीने लग जाएं। एक परिवार में सब अपने लिए जीवन जीते हैं, किसी को कोई चैनल पसंद है, किसी को कोई चैनल पसंद है, किसी को कोई चैनल पसंद है, इसलिए सब रिमोट पर झगड़ा करने लग जाते हैं। फाइनली कंक्लूजन के रूप में सबके कमरे अलग अलग करने पड़ते हैं, सबके कमरे अलग अलग करके सबको अलग अलग टेलीविजन देना पड़ता है या मोबाइल पकड़ाना पड़ता है, तब जाके झगड़े शांत होते हैं। अब सबका एक ही बड़ा हॉल बन जाए, जैसे ये बड़ा हॉल बन गया, सबका एक ही चैनल चल रहा है, हरे कृष्णा चैनल, तो सब पूरा परिवार यही चैनल में आ जाए करे, तो ये सबका एक केंद्र बिंदु बन गया। तो हमें ऐसे अगर बना के चलेंगे तो एक ही पॉइंट को लेके कितने भी सर्कल बनाओगे तो काटेंगे नहीं, और अलग अलग पॉइंट को लेके सर्कल बनाओगे तो फिर सब एक दूसरे को काटेंगे, निश्चित काटेंगे। तो यहाँ तो किसी के साथ खून का भी रिश्ता नहीं, जाति पाति का भी रिश्ता नहीं, फिर भी सब एक साथ रह पाते हैं, और घर में एक ही खून के रिश्ते वाले नहीं रह पाते, क्योंकि एक दूसरे में अन्यता भसी पड़ी है, सब अपने अपने को सेल्फ सेंट्रिक होकर के जीवन जीते हैं। कृष्ण को सेंटर बना करके जीवन जीना, उसको कहते हैं अनन्यता। मेरे मन में भी कोई और नहीं, मेरे मन में भी कोई और नहीं, मेरे मन सबका जीवन का लक्ष्य कृष्ण ही है, चरम लक्ष्य कृष्ण है, इससे बढ़िया बात क्या है, आनंद ही आनंद है। फिर वो परिवार बन गया। नाते नेह राम के मनियत, ये नाते रिश्ते राम जी के लिए ही बनाए गए हैं, अब इसका उपयोग गलत कर दिया। जैसे आंख और कान राम जी के लिए बनाए गए, ये इतने जरूरी है, बोले एक नहीं दो दो चाहिए, एक खराब हो जाए तो दूसरे से काम चला, इसका उपयोग दूसरी दिशा में करने लग गए हम, तो बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, एनी मोर कोई प्रश्न कर रहे थे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कृष्ण के प्रति कभी न डिगने वाला विश्वास कैसे जनरेट हो। पहली बात तो कभी ना डिगने वाले भक्तों के साथ रहने से ऐसा होता है। जब हम डिगने वाले लोगों के साथ रहते तो हम भी डिग जाते हैं। जैसे ही करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो कभी ना डिगने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा भी कभी नहीं डिगेगा। उसी को प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में भी बताया है। हाँ तात्पर्य आप शायद पढ़ रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं। हम महात्मा जब बनने जाते हैं तो कैसे बनते हैं? अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विश्वास भक्ति प्राप्त करते हैं, विकसित करते हैं। भक्ति का अर्थ ही है विश्वास। भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है और श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, सारे काम हो गए कृष्ण भक्ति करने से। ऐसा सुदृढ़ निश्चय कैसे होगा? बोले ये धीरे धीरे होता है और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोकों में जाना चाहते हैं और यहां तक कि वे ना ही किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते, इतने दृढ़ हो जाते हैं। लेकिन ये एक ही इंजेक्शन से नहीं होते, बीमारी पुरानी है, दवाई लंबी चलेंगी। तब एडमिट हो जाइए बस, गंभीर रोग है। ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का?
जैसे रोग की रक्षा भगवान ने की थी, उस वक्त की थी जब रोग थी, उस सब में जाना कि मेरा कोई दामा बीच में ये मेरी लाल बचा ले।
हाँ।
पांच ये पति हैं, ये बहुत शक्तिशाली हैं, ये लाल बचा लेंगे। जब तक उसे ये एहसास नहीं हो कि नहीं सिर्फ कृष्णा ही है जो लाल बचा सकते हैं, जब तक उन्होंने उनकी
बिल्कुल।
लेकिन जब तक कृष्ण पे आस्था नहीं होगी शायद हमारा काम अधूरा
है। शायद नहीं, पक्का पक्का ही अधूरा रहेगा शायद नहीं। तो पहले से ही माता द्रौपदी ऐसी थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए लीला प्रस्तुत कराने के लिए ऐसी लीला की कि जिससे हम मूर्ख लोग इस बात को समझ जाएं, और कुछ ही बुद्धिमान लोग होते हैं सैनी प्रभु जैसे जो इस रहस्य को समझ पाते हैं। और समझ में थोड़ा सा अंतर इतना कि शायद घुसा हुआ है, बस थोड़ा सा शायद निकाल देना हमने। और पक्का करना है कि संसारी कार्य तो हमसे बिगड़ेंगे ही, या संसारी लोगों की शरण में जाने से बिगड़ेंगे। कोई बनने वाले नहीं है, बनते हुए दिखेंगे लेकिन बनेंगे नहीं, बनेंगे केवल श्री कृष्ण की शरण में जाने से। ठीक है सैनी प्रभु, तो आप ऐसे ही सभी भक्तों को उत्साहित करते रहिए अपने भक्ति में जीवन से, और सब लोग भी अपने जीवन में शायद तक उठ जाएंगे, फिर शायद से ऊपर भी उठ जाएंगे। और कोई प्रश्न है किसी का, कोई टीका टिप्पणी? यस हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा प्रश्न किया आपने। तो वो स्टैंडर्ड हाई है और भक्ति बढ़ना मतलब ह्यूमिलिटी बढ़ना बिकॉज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो भक्ति विकसित यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। पहली बात तो धीरे धीरे हम उस स्टैंडर्ड तक भी पहुंचेंगे, डरने की बात नहीं है। ऐसा प्रोसेस बता रहे अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश लेना पहला काम, फिर दिव्य सेवा में लगना ये दूसरा काम। प्रभुपाद जी ने बताया ना, महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि महात्मा बन गए तो दिव्य संदेश देंगे ही, केवल महात्मा बन रहे हैं तो दिव्य संदेश अनुभव सिद्ध भक्तों से प्राप्त करते हैं। और इसे और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावना मृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं। सेवा में लगना पड़ेगा, पहले संदेश प्राप्त करना पड़ेगा, फिर सेवा में लगना पड़ेगा, फिर धीरे 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 हमारी भक्ति विकसित हो जाएगी और लीन हो जाएंगी। ठीक है, तो वो स्तर भी आएगा। तो बोले हमारी स्थिति का स्तर क्या है, जैसा आपने प्रश्न किया, हम उतने हाई स्टैंडर्ड पर नहीं, तो हमारा स्टैंडर्ड का बिगिनिंग क्या है? इसका बिगिनिंग यही है कि जो विनम्र होता है, जिसके अंदर ह्यूमिलिटी होती है, वो नीचा अपने आप को महसूस करता है और दूसरों को ऊंचा महसूस करता है। ठीक, तो हमारा स्टैंडर्ड यहीं से शुरू होता है कि इस संदेश को देने के लिए हम ऊपर बैठे हैं आपसे और आप नीचे बैठे हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी। अन्यथा आप लड़ सकते थे, प्रभु जी मेरे से ऊंचा आसन लगाओ आप, लेकिन आप प्रेम से नीचे बैठे हैं, हमें ऊपर बिठा के रखा है, तो थोड़ा ऊंचा नीचे आ गया कि नहीं यहीं से? तो यहीं से ह्यूमिलिटी की शुरुआत है। आप इतना रोज करेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ इतना चालू कर दो, नीचे बैठना और बैठ करके कथा सुनना। वेरी सिंपल बिगिनिंग। और जैसा समझ में आता जाएगा वैसे वैसे अपने आप ही ह्यूमिलिटी, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता, समझ के ऊपर निर्भर है। हमारी समझ विकसित होगी तो हम अपने आप ही हम्बल हो जाएंगे। जैसे आपको अभी कह दिया जाए कि प्रभु जी आप जो है यहाँ पर कृपा करके प्रसाद वितरण करना अभी, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और आपको ये कह दिया जाए, कोई कठिन काम है प्रसाद वितरण करना? आदेश का पालन कर रहे हैं, आदेश का पालन वही कर सकता है जो छोटा समझता हो अपने आप, है कि नहीं? बड़ा समझेंगे तो आप कैसे सेवा करेंगे? तो आपको निवेदन किया प्रसाद वितरण करना प्रसाद के बाद, क्लास के बाद, तो आप तैयार हो गए। आपको कहा जाए कोई कठिन काम नहीं, तो ये तो कर सकते हैं ना आप, लेकिन कहा जाए आप ये रोज करना है, तो करेंगे आप रोज? डेफिनेटली। तो अभी आपकी सेवा लगाई जाती है, सुबह भी प्रसाद वितरण करना है आपने और शाम को भी करना है, करेंगे? अब नहीं करेंगे आप डेफिनेटली। तो एक सेवा की शुरुआत तो हो गई ना, आज कह दिया तो आज तो करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समझ बढ़ेगी वैसे रोज करने लग जाओगे, ठीक है नहीं? फिर रोज प्रसाद बांटने लग जाओ, फिर कहा जाए थोड़ा सा प्रभु जी मंदिर में झाड़ू भी लगाना है, तो पहले एक दिन लगाओगे, फिर दो दिन के स्तर पर लाया जाएगा, फिर तीन दिन, फिर आठ दिन के आठ दिन, फिर इधर उधर झाड़ू पोछा बंद हो जाएगा, भगवान का झाड़ू पोछा चालू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे विकसित होगा। तो अभी इतना स्टैंडर्ड ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड पर आ जाए हम कि हाँ नीचे बैठे और यही मतलब मंदिर में ही रहना चालू कर दें पहले, ये शुरुआत है। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है और किसी का? थैंक यू आप सभी भक्तों का धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी राहुल नेगी प्रभु हमारे कीर्तन करेंगे और आप लोग 5 मिनट के लिए थोड़ा सुंदर नृत्य करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।